अध्याय चार। परमेश्वर उनके मानवीय परिवार के साथ जुड़े। मसीही लोग यीशु के आगमन के विषय में सब जानते हैं। वे जानते हैं कि एक कुंवारी लड़की मरियम के द्वारा उनका चमत्कारिक रीति से जन्म हुआ था। मत्ती 1:18-25। खास करके बहुत सारे लोग बड़े दिन के उत्सव की सजावट करते समय बालक यीशु को चरनी में रखा हो ऐसा चित्र देखने से परिचित हैं। यीशु ने मसीह के विषय में पुराने नियम में की गई बहुत सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया था। उसके विषय में एक पुराना पर बहुत प्रसिद्ध गीत बड़ा दिन मनाने के समय गाया जाता है। यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु से ज्यादा भी कार्य किए हैं। यीशु ने इस जगत में जन्म लिया था। इस बात का मुख्य भार अंत में तो क्रूस पर हुई उनकी मृत्यु पर ही दिया जाता है। यीशु हमारे पापों की माफी प्राप्त करने का कारण बने और उनकी वजह से ही हम परमेश्वर के परिवार में फिर से प्रवेश पाते हैं। यूहन्ना 3:16। दूसरे शब्दों में कहें तो जब बहुत सारे मसीही लोग यीशु के विषय में विचार करते हैं तब वे क्रूस के बारे में विचार करते हैं। उस समय वे एक बात को चूक जाते हैं। क्रूस की बात की वजह से परमेश्वर यीशु के रूप में मनुष्य बने, यह वास्तविकता कहीं खो जाती है। बहुत सारे मसीहियों को इस बात का ज्ञात नहीं होता कि परमेश्वर को बहुत कारणों की वजह से मनुष्य बनना जरूरी था। पुराने नियम की हरेक वाचाओं को पूरा करने और पहले हमने जिस विद्रोह के बारे में बात की उसे उल्टा देने के लिए परमेश्वर का मनुष्य बनना जरूरी था। परमेश्वर ने मनुष्य जाति का नाश करने का और पहले बनाई हुई अपनी योजना को छोड़ देने का इनकार किया था। इसलिए मनुष्य अब परमेश्वर के साथ सदाकाल तक रहेंगे, यह आशा जीवंत रही है। यीशु मनुष्यों के पास आए, उन्हें माफी दी और उनके साथ संबंध बनाए रखा। वे परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर के साथ और दूसरे मनुष्यों के साथ मेल मिलाप में रहें, ऐसी परमेश्वर की इच्छा थी। पर परमेश्वर के बच्चों ने हर बार परमेश्वर का इनकार किया। यह तो मानो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कहा कि तुम अभी भी मेरे साथ रह सकते हो, इस बात पर विश्वास करो और तुम्हारा मन कहाँ है यह तुम्हारे वर्तन से बताओ। तब समस्या और भी विकट हो गई। इस मनोभाव को बताने के लिए परमेश्वर ने भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत दिया है। यशाया 53:6, मत्ती 9:36। यह बात सच में सही है। पिछले अध्याय में मैंने लिखा है कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर पर विश्वास कर सकें, इसकी वजह से उन्हें नए हृदय की और परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत थी। उन्हें तो अपने आप से और उन्हें प्रेम करने वाला परमेश्वर जो अनंत जीवन देता है उसके बगैर का जो मकाम है उससे छूटने की जरूरत थी। परमेश्वर अपनी वाचाओं को सम्मान दे, मृत्यु के श्राप को उल्टाकर उसे आशीष में बदल दे और अपने लोगों को विश्वास में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी हो, ऐसा एक मार्ग होना ही चाहिए। इन सभी समस्याओं के लिए परमेश्वर का उकेल महत्वपूर्ण था। परमेश्वर मनुष्य बने, उन्होंने मनुष्य के साथ जुड़ने का निर्णय किया। यहां हमारी कहानी में यीशु का प्रवेश होता है। यीशु परमेश्वर होने के बावजूद भी इंसान बने। यूहन्ना 1:14-15, कलुसियों 1:15-20, 2:6-9। यीशु इन सभी रुकावटों को दूर करने का उपाय बन गए। मनुष्य जाति के बदले मृत्यु को सहने के द्वारा ही मृत्यु के श्राप को उल्टाकर आशीष रूप बनाया जाया जा सकता था। उसका अर्थ यह है कि इस मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होना ही चाहिए और सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। अदन वाटिका में जो समस्या हुई थी उसका उपाय यीशु खुद थे। क्या आपको अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो याद है? परमेश्वर ने अलौकिक रीति से हस्तक्षेप करके अब्राहम और सारा को एक पुत्र दिया था। वो तो इसराइल देश की शुरुआत थी। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि उसके संतानों में से एक संतान बाबिल के सामने परमेश्वर ने जिन देशों को छोड़ दिया था उनको आशीषित करेगा। पर एक सामान्य मनुष्य यह कैसे कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही अब्राहम के वफादार संतान के तौर पर इसराइल के अलावा जो देश थे उन सभी देशों को आशीषित करने की वाचा के वचन को पूरा कर सकते हैं। अब्राहम की वो संतान तो यीशु थे। मत्ती 1:1, लूका 3:34। छोड़ दिए गए देश, अन्य जाति लोग परमेश्वर के परिवार में फिर से जुड़ सके, इसलिए जिस संतान का वचन दिया था वो संतान तो यीशु थे। गलतियों 3:16-18, 26-29। अब्राहम की वाचा को पूरी करने का उपाय तो यीशु थे। यीशु दाऊद की संतान भी थे, इसलिए वे कानूनी तौर से राजा भी थे। मत्ती 1:1, लुका 1:32, रोमियो 1:3। यीशु दाऊद के साथ बांधी गई वाचा को पूरा करने का उपाय थे। यीशु कानूनी तौर पर इस वंश के थे और परमेश्वर को पूर्ण रूप से वफादार थे। उन्होंने कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का अनादर नहीं किया था। उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया था। दूसरा कुरिन्थियों 5:12, इब्रानियों 4:15, पहला पत्रस 2:22। उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया था। उस वास्तविकता का अर्थ यह है कि वे परमेश्वर के नियम के हेतु का और सीने पर्वत के आगे बांधी गई वाचा का संपूर्ण उदाहरण थे। यीशु परमेश्वर का स्वरूप है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4, कुलुसियों 1:15, कैसे परमेश्वर के स्वरूप में रूपांतरित होना है उसका उदाहरण तो यीशु है। हम यीशु के उदाहरण का अनुसरण करें ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। पहला पत्रस 2:21। परमेश्वर मनुष्य बने, इस विचार को समझना कठिन है। परमेश्वर मनुष्य बन सकते हैं क्योंकि वे एक से ज्यादा व्यक्ति है। परमेश्वर तीन व्यक्ति है जो उनके स्वभाव में पूर्ण रूप से एक ही है। बाइबिल इन तीन व्यक्तियों की पहचान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तौर पर देता है। मसीही लोग उन्हें त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर पुत्र यीशु के रूप में मनुष्य बने। यूहन्ना 1:1-14-15। परमेश्वर मनुष्य बने, इस कार्य के लिए धर्मशास्त्री लोग अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं। परमेश्वर पिता अपनी वाचाओं को पूरा करने के लिए जिस मनुष्य पर भरोसा कर सकें वो मनुष्य तो यीशु ही थे। मैंने पहले जो बात की वो शायद आपको याद होगी कि परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले जानते थे कि मनुष्य जाति को अपने परिवार में वापस लाने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेज देंगे। इफिसियों 1:1-14, पहला पत्रस 1:20। अद्भुत बात तो यह है कि परमेश्वर मानवीय परिवार प्राप्त कर सके, इसलिए पुत्र यीशु मनुष्य बनने, दुख सहने और मृत्यु पाने के लिए तैयार थे। इस बातचीत का वर्णन नए नियम का एक शास्त्र भाग इस प्रकार करता है। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। इब्रानियों 10:5-7। यह अच्छी बात है कि परमेश्वर पुत्र यीशु के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार था, क्योंकि सिर्फ वाचाएं ही नहीं वरन अलौकिक विद्रोह की वजह से आए हुए दुखों पर जय पाना यह सब जोखिम में था। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि उस विद्रोह की वजह से परमेश्वर का मनुष्य बनना जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर अपने मानवीय परिवार के साथ जुड़े उसके साथ उनके आत्मा के आने का मार्ग खुल गया था। पतन से ज्यादा समाधान। परमेश्वर यीशु के रूप में इंसान बने, इससे उनकी मृत्यु हो सकती थी। यह बात महत्वपूर्ण है कि सिर्फ पुनरुत्थान के द्वारा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मृत्यु के बगैर आपको पुनरुत्थान प्राप्त नहीं हो सकता। यीशु खुद परमेश्वर भी थे, इसलिए उनके पास अपना प्राण फिर से लेने का अधिकार था। यूहन्ना 10:17-18। यीशु की मृत्यु परमेश्वर की योजना थी, इसलिए परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले से जानते थे कि यीशु को मृत्यु में से जिलाया जाएगा। प्रेरितों 2:23-24, 32, 3:15, 10:40। गलतियों 1:1। पुनरुत्थान की वजह से परमेश्वर के साथ हमारी जो अलगता थी उसे दूर किया जा चुका है, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा चुका है। मृत्यु तो अदन वाटिका में किए गए विद्रोह की असर थी। सर्प शैतान ने आदम और हवा को प्रलोभन में डाला था। उसके बाद जो समस्याएं आई थी उसका उपाय किया गया था। जो कोई भी व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान हमें हमारे पापों की माफी और अनंत जीवन प्रदान करता है, वो व्यक्ति सदाकाल तक परमेश्वर के परिवार में रहेगा। रोमियो 4:16-25, 8:10-11, 10:9-10, 1 कुरिन्थियों 6:14। मृत्यु में से पुनरुत्थान पाने के बाद यीशु के लिए स्वर्ग में चले जाना जरूरी था। यीशु स्वर्ग में चले गए और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर विराजमान है। मरकुस 6:19, यहुन्ना 20:17, कुलिसियों 3:1, इब्रानियों 12:2। यह कार्य तो विश्वासियों में निवास करने के लिए पवित्र आत्मा को भेज देने का पूर्व संकेत था। प्रेरितों 2:33, रोमियो 8:9-11। पवित्र आत्मा आ सके उसके लिए यीशु का जाना जरूरी था। यूहन्ना 14:25-26, 15:26-16:7, लूका 24:49। पवित्र आत्मा का आगमन तो यर्मिया और यहस्केल ने किए गए नई वाचा के वर्णन की परिपूर्णता थी। यर्मिया 31:31-34, यहस्केल 26:22-28। पवित्र आत्मा दुष्टता पर विजय दिलाता है, गलतियों 5:16-17, और उसके कार्य यीशु से बड़े है, यूहन्ना 14:12। यीशु जानते थे कि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान नए नियम की परिपूर्णता की चाबी है। इसलिए यीशु ने आखिरी भोज के समय उनके शिष्यों को कहा था कि उनका लहू वाचा का लहू है जो लोगों के लिए बहाया जाता है, मत्ती 26:28, मरकुस 14:24, लूका 22:20। यीशु स्वर्ग में चले गए और उनके आत्मा को पृथ्वी पर भेज दिया गया। उसके बाद अब मानव जात दुष्टता के आगे लाचार नहीं है। मानवीय परिवार की समस्याएं, बार बार मिलने वाली निष्फलताएं और विद्रोह का उपाय तो यह था कि यीशु को मनुष्य बनकर वाचा की सारी शर्तों को पूरा करना था। इस पुस्तक की शुरुआत में ही मैंने जो प्रश्न पूछा था उसे याद करो, परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपको चाहते हैं और सदाकाल के लिए आपको अपने पास रख सके, इसलिए मृत्यु और पाप की समस्या का उपाय करने और मनुष्य जात के साथ उन्होंने जो वाचा बांधी थी उसे पूरा करने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेज दिया है। अपना एक मानवीय परिवार हो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। दूसरा कोई मार्ग नहीं था। सुसंदेश को हमारे कार्यों के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके बहुत कारण है, यानी कि हम हमारे प्रयत्नों के द्वारा परमेश्वर का प्रेम और उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत से कारणों में से यह सबसे बड़ा कारण है। हमारे प्रयत्न पर्याप्त है, ऐसा विचार तो पागलपन है। अगर हम हमारे कार्यों के द्वारा उद्धार पा सकते होते तो यीशु के आगमन, मृत्यु और पुनरुत्थान की कोई जरूरत ही ना होती। शैतान और उसके मित्र, बुद्धू और मूर्ख, इस बात में दूसरा एक मोड़ है और मैं नहीं चाहता कि आप उसे चूक जाएं। मुझे याद है कि मुझे एक से ज्यादा बार यह विचार आया था और आप भी शायद ऐसा विचार कर रहे होंगे कि अगर यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान की वजह से शैतान ने जो किया था उसकी असरों को उल्टा दिया गया है, जगत में जो दुष्टता थी उसे रोक दी गई है और दूसरे देशों के चुनौतीपूर्ण देवों का अधिकार ले लिया गया है, तो फिर क्यों शैतान और दूसरी अशुद्ध आत्माएं यीशु को मार डाल सके? यह तो मूर्खतापूर्ण बात लगती है। इसके विषय में सोचें, परमेश्वर की योजना में यीशु की जो मृत्यु थी वो उनकी योजना का एक भाग थी, क्योंकि मृत्यु पर विजय पाकर पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए मरना जरूरी था। अगर यीशु का कार्य पूरा नहीं हुआ होता तो यीशु परमेश्वर पिता के पास वापिस नहीं जा सके होते। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो दुष्टता को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा आया न होता। अगर शैतान और अंधकार के दूसरे अधिकारियों ने यीशु को छोड़ दिया होता तो परमेश्वर की योजना निष्फल हो जाती। क्या वे अलौकिक मूर्ख है? इस मुद्दे के विषय में मैंने बहुत कुछ लिखा है, वो प्रभावशाली है। वास्तव में तो नया नियम इस प्रश्न का उत्तर देता है। यीशु ने जो सुसंदेश दिया था उसके विषय में बात करते हुए पौलुस प्रेरित कहता है कि हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारे महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। दूसरा करिन्थियों 2:7-8। आत्मिक जगत के दुष्ट सदस्यों के लिए दूसरे कुछ शास्त्र भागों में पौलुस अधिकारियों इस शब्द का प्रयोग करता है। इफिसियों 3:10, 6:12, कुलुसियों 1:16। मुद्दा तो सरल है कि शैतान, अशुद्ध आत्माएं और परमेश्वर के विरोधी बने उनके पुत्र परमेश्वर की योजना को जानते नहीं थे। यीशु ने जब अपनी सेवकाएं की शुरुआत की तब यीशु कौन है उसके विषय में वे निश्चित रूप से जानते थे। उन्होंने यीशु को परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का पवित्र कहकर पुकारा था। मत्ती 4:1-10, 8:29, मरकुस 1:12-13, 21:24, 3:11, लूका 4:1-13, 31:37, 8:28। पुराना नियम स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर अदन वाटिका की मूल योजना के अनुसार राज करने के लिए मानवीय परिवार की इच्छा रखते थे। शैतान और उसके मित्र यह अनुमान नहीं कर सके कि यीशु इस पृथ्वी पर अपनी योजना को पूरी करने के लिए आए थे। वे नहीं जानते थे कि यीशु कैसे इस योजना को पूरी करेंगे, इसलिए उनकी दृष्टि में यीशु को मार डालने का कार्य करना उन्हें तार्किक रूप से अच्छा लगा। पर यह कार्य तो सब बातों में महत्वपूर्ण बन गया। परमेश्वर ने उन्हें मूर्ख बनाया। परमेश्वर अपने अलौकिक शत्रुओं से कितने ज्यादा बुद्धिमान है यह समझना बहुत ही सरल है। मगर हमें एक बात को भूलना नहीं है कि परमेश्वर शैतान और अशुद्ध आत्माओं को मूर्ख दिखाने के लिए मनुष्य जात से नहीं जुड़े थे, पर परमेश्वर आपको अपने परिवार के सदस्य के रूप में चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह कार्य किया था। परमेश्वर को दूसरे कोई भी हेतु की जरूरत नहीं थी, उनका हेतु तो आप हो। इस बात में आगे बहुत कुछ है। यीशु ने उनका कार्य पूरा कर दिया, पर अब एक सरल मगर बहुत ही महत्वपूर्ण कारण के लिए पवित्र आत्मा के कार्य पर ध्यान देने की जरूरत है। यह बात तो हो सके इतने ज्यादा लोगों को परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनाने के लिए परमेश्वर को उपयोगी होने के हमारे कार्य के साथ जुड़ी हुई बात है।